Ashtina. Or Sattva. Jaise Baba Sukshma Vatan Me Upram Hai. Usi Upram Avastha Ka Anubhav Karna. To Sabhi Tayar. Soft Music Bajega. Or Commentary Hogi. जैसे जैसे कमेंट्री में आपको बताया जाएगा उसी अनुसार अनुभव करते जाना है, ठीक है? सारी हलचल समाप्त, सारी देह संपूर्ण अचल, संपूर्ण मौन, मैं आत्मा, त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान। चेतना की एक शक्तिशाली तरंग स्थूल शरीर को यहीं छोड़, मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप जा रही हूं ऊपर, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं आसमान से बाहर, तत्वों से परे, गया सूक्ष्म वतन। देख रहा हूं सम्मुख खड़े हैं साक्षात अव्यक्त भाव दाता, बाबा की दृष्टि से संपूर्ण पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही, से आप सर्व शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रहे। अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा में समा रहे। शक्तिशाली आत्मा बन रही अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ज्ञान और गुणों की वर्षा इस हाथ द्वारा मुझ पर हो रही है। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विघ्न विनाशक भव, बच्चे विजयी भव, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, सफलता मूर्त भव, अब बाबा मेरा हाथ अपने हाथों में ले रहे, मेरे सर्व संबंध एक बाप से, सभी संबंधों का रस केवल और केवल एक से, एक से प्यार, एक की याद, एक के प्यार में मगन, एक की लगन, एक के प्रति समर्पण भाव, और एक से ही सर्व संबंध, बस एक वही। अब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं सूक्ष्म वतन में संसार की असंख्यात आत्माएं, इन दुखी आत्माओं को मैं सुख की किरणें दे रहा हूं। अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दे रहा हूं। पवित्र आत्माओं को पवित्रता की किरणें प्रदान कर रहा हूं। संसार की एक एक आत्मा को संतुष्ट मणि भव का वरदान दे रहा हूं। बाप समान संपूर्ण साक्षी, सारे विश्व को साक्षी होकर देख रहा हूं, सारे जगत को संपूर्ण साक्षी भाव से देख रहा हूं। सारा संसार एक खेल की तरह प्रतीत हो रहा है। पूर्ण साक्षी भाव, मैं फरिश्ता हूं। बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे आता और प्रवेश करता फिर से अपनी स्थूल देह में। मैं अत्यंत शांत स्वरूप फरिश्ता अभ्यास। क्या क्या अभ्यास किया? 7 ड्रिल, सूक्ष्म वतन में जाना, सबसे पहले बाबा से दृष्टि लेना। किस चीज की दृष्टि? संपूर्ण पवित्रता की दृष्टि। दूसरा, यह अनुभव करना कि अव्यक्त बाप दादा के भ्रुकुटी से अनंत शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। तीसरा क्या किया? बाबा ने अपना हाथ यहां रख दिया है, ऐसा अनुभव करना है। हम थके थे, दिन भर की थकान, दिन भर का तनाव था, और भगवान ने आकर सीधा हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा उसमें अनंत शांति का अनुभव। सारी ज्ञान की धाराएं उस हाथों से बह रही है और मुझ में समा रही है। चौथा, बाबा ने मुझे तिलक दिया है, तुलसीदास के जीवन में बताया है। स्वप्न में श्री राम आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, फिर से उसी 7 स्वरूपों का अपने ही मन में अभ्यास करना है। श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। तुलसीदास पूछते हैं कि मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? दिखाया है वो हनुमान जी, कहते हैं जब राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे तो मैं इशारा करूंगा, पहचान लेना। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, स्वयं भगवान आकर मस्तक पर तिलक दे दे। कौन सा तिलक? विजयी भाव का तिलक। विकारों पर आज से तुम्हारी विजय होगी, काम अब तुम्हें नहीं सताएगा, क्रोध सदा के लिए विदा हो जाएगा, लोभ स्पर्श नहीं कर सकेगा, अहंकार मोह छूट जाएंगे। तो भगवान से क्या करना है? विजय का तिलक लेना है। दूसरा, कौन सा तिलक लेंगे? 4 तिलक अभी हमने लिए हैं। बाप समान भव का तिलक, उसमें भी बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव का तिलक। इस एक वाक्य में सब कुछ आ जाता है, फरिश्ता भी आ जाता है, बाप समान भी आ जाता है और कर्मयोग भी आ जाता है। तीसरा तिलक विघ्न विनाशक भाव का तिलक। चौथा तिलक सफलता मूर्त सेवाओं में सफलता। ये चार तिलक। तो पहला बाबा से दृष्टि, दूसरा बाबा के रुकुटी से शक्तियां, तीसरा बाबा का वरदानी हस्त सिर पर, चौथा तिलक और पांचवा बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव। वो माँ भी है तो बाप भी है, तो बहन भी है तो भाई भी है, तो सखा भी है तो मित्र भी है, गाइड भी है, कोच भी है, टीचर भी है, बागवान भी है, सर्वस्व है। रामायण में दिखाया है एक जगह दशरथ बूढ़ा हो जाता है, आईने में देखता है तो उसे दिखाई देते हैं उसके जो बाल है सफेद हो गए। पहली बार उसे पता चलता है कि मैं बूढ़ा हुआ जब आईने में देखता है, और तब उसे संकल्प आता है कि मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, राज्य कैसे चलेगा। इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाता है और कहता है, ये नहीं कहता कि मैं संतानहीन हूं मुझे संतान दे दो, नहीं, मानस में वचन है, ऐसा कुछ करो जाई विधि होई नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ कह दो कि जिससे मेरा कल्याण हो। जब दुविधा का समय हो जीवन में, जब समस्या और विपदा का समय हो, तब गुरु के पास जाया जाता है और फिर गुरु ज्ञान देता है, मार्ग बताता है, मार्गदर्शन करता है। भगवान कौन है हमारा? गुरु है ना, सद्गुरु है, तो किसके पास जाएंगे? मनुष्य गुरुओं के पास कि भगवान के पास? तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम्। गीता में लिखा है, जब गुरु के सम्मुख जाओ, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस गुरु की बहुत प्रेम से सेवा करो। इस भाव से नहीं जाओ उसे टेस्ट करने के लिए कि देखे तो उसको आता है या नहीं आता है। गुरु के पास जा रहे हैं तो इस भाव से जा रहे हैं, समर्पण भाव से, परिप्रश्ने न सेवया। ऐसा जब भाव होगा तब उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, तब वो गुरु उपदेश करेगा उस परम ज्ञान का, ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम। तो जीवन की यदि कोई समस्या है तो कहां जाना है? परम गुरु के पास, सर्व संबंधों का अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, संसार की सभी आत्माओं को इमर्ज करना, और क्या करना उनको? उन्हें सकाश देना, उन आत्माओं से बात करना, उन आत्माओं का आह्वान करना। और उन्हें सकाश देना, ये छठवां अभ्यास। सातवां अभ्यास उपराम स्थिति का अनुभव, परम साक्षी भाव का अनुभव। संसार में जो हो रहा है हो रहा है, हम सबसे अलग है, इस बात का कुछ समय के लिए अनुभव। संपूर्ण साक्षी भाव। तो ऐसी 7 ड्रिल रोज करनी है, करेंगे सभी? कितनी बार करेंगे? 2 बार, एक सुबह अमृत वेला और एक शाम को। अगर शाम को नहीं हो सकता है तो कम से कम अमृत वेला तो करना है। सबसे पहला बाबा से दृष्टि लेना, दूसरा बाबा से शक्तियां लेना, तीसरा बाबा से हाथ अपने सिर पर रखवा लेना, चौथा तिलक लगा लेना, पांचवा सर्व संबंधों का अनुभव करना, छठवा संसार की आत्माओं को इमर्ज करना, और सातवा संपूर्ण प्राम स्थिति का अनुभव, संपूर्ण साक्षी स्थिति का अनुभव, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव। अब ये जो 6 नंबर की ड्रिल है, आत्माओं को इमर्ज करना, उनसे बात करना, उसमें और एक चीज करनी है। इस संसार में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा बहुत सारा हिसाब किताब है। द्वापर से अब तक कितनी ही आत्माएं हुई है जिनको हमने बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, पीड़ा दी है, वेदना पहुंचाई है, शारीरिक कष्ट दिया है, अपशब्द बोले हैं, जिनका अपमान भी किया है, जिनसे झगड़ा किया है, किनके विरुद्ध षड्यंत्र किया है, झूठी गवाही दी थी कभी। हो सकता है किसी जन्म में हमारी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। वो सभी आत्माओं को इमर्ज करना है। कौन सी आत्माएं? जिन जिन को हमने दुखी किया, जिन जिन को हमने सताया, जिन जिन को हमने बहुत पीड़ा पहुंचाई, मानसिक कष्ट दिया, क्या करेंगे उनका? उनसे क्षमा मांगनी है। क्यों क्षमा मांगे? उनको क्षमा मांगनी चाहिए, हम क्यों मांगे? उनके साथ वही होना चाहिए था, उसी के योग्य थे वो, क्यों क्षमा मांगे? हमें कार्मिक अकाउंट सेटल करना है और क्यों क्षमा मांगनी है हमें? खुद को माफ करने के लिए। अच्छा, हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, क्यों? जिनको हमने इंसल्ट की, नीचा दिखाया, गिराया, अपशब्द बोले, व्यंग बाण छोड़े, कमेंट्स, गलती हमसे हुई है पर हम माफी क्यों मांगे? कर्म बंधन तो बोल दिया, कर्म बंधन है वो छूट गया। पीछे हम पूर्वज आत्माएं हैं, ओके, ये तो दूसरी इधर आएगा, और हिसाब किताब चुप तो करने के लिए, और जब उनको हम माफ करेंगे तो खुशी हमको मिलेगी। अभी खुश नहीं है? खुश है। और क्यों माफ करते उनको? अब माफी क्यों मांगे? माफ करने की बात नहीं, अभी माफी मांगने की बात चल रही है। पहले किए हुए विकर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए, जब तक हमारे साथ दूसरी आत्माओं की बद्दुआएं चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, हम पुरुषार्थ तीव्र नहीं कर सकते। सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेला शक्तिशाली, मुरलियां पढ़ रहे कई बार, परंतु यदि किसी एक आत्मा को हमने दुख दिया था और उसके संकल्प चल रहे हैं, तो उसकी बद्दुआ हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हमें उन आत्माओं से जो हमसे अभी भी क्रोधित है, जो हमसे अभी भी रूठे हुए हैं, जो अभी भी हमसे नाराज है, जिनको हमने सताया था, दुखी किया था, पीड़ा दी थी, अपमान किया था, इस जन्म में नहीं, द्वापर से अब तक, बचपन से लेकर तो अब तक इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन में जब से जन्म लिया उस जन्म से लेकर अब तक, इस ब्राह्मण परिवार में भी कितनों को हमने दुख दिया है। हर एक को दिया है या नहीं दिया है ना, क्यों दिया? विस्मृति थी। जन जन के हिसाब किताब है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब। दो हफ्ते पहले संडे की मुरली, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होंगे। अभी अभी बाबा 8 अक्टूबर बाबा नहीं आए थे, पर रिकॉर्डेड मुरली चली थी 26 फरवरी 2006 की इंदौर जोन से मुलाकात, जिसमें बाबा ने कहा था ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होंगे। ब्राह्मणों के हिसाब किताब बाहर वालों से नहीं, इधर अंदर वालों से चुकतू होंगे। इस ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण परिवार एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। जन्म जन्म से देवी देवता जो थे द्वापर से भी साथ साथ ही रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं रहे, बड़े बड़े, कोई इधर का राजा कोई उधर का राजा। इस राजा ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया, वो राजा को हरा दिया, पूरा शहर नष्ट कर दिया। कभी कोई जमींदार, कभी कोई बहुत बड़ा साहूकार था, किसी गरीब किसान की जमीन हड़प ली, पूरा परिवार मर गया। और वही किसान अब हमारे ही सेंटर में कहीं ना कहीं, हमारे ही ऑफिस में कहीं ना कहीं, हमारे ही घर में हमारा ही छोटा सा बच्चा बनकर आया है। क्या क्या करने आया है? तलवार लेकर आया है छोटा सा बच्चा, दिखता है पालने में? उसके हाथ में तलवार माताओं को दिखाई देती है क्या? तलवार, छोटा सा बच्चा घर में जो आता है उसके हाथ में एक तलवार होती है हिसाब किताब की। दुख तो देगा, ऐसे ही छोड़ी छोड़ देगा। किसी ना किसी जन्म में तुमने भी तो सताया था। माता है बाबा से कहती है, साकार मुरली के वाक्य है, बाबा माता है बाप से कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत सताता है, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं, तुमने भी सताया होगा, तुमने भी सताया होगा, इसलिए उन आत्माओं को देखो और उनसे माफी मांगो। एक दूसरा ग्रुप, जिन आत्माओं ने हमें बहुत सताया, जिन आत्माओं ने हमारा अपमान किया, जिन आत्माओं ने हमारा जीना दुर्भर कर दिया, जिन आत्माओं ने कदम कदम पर विघ्न डाले, जिन आत्माओं ने हमारी टांग खींची, जिन आत्माओं ने हमारे सम्मुख तो बहुत अच्छा है हमारी महिमा की, पर हमारे पीछे हमारी ग्लानी की, असहयोग दिया, षड्यंत्र किए, प्लॉट किए हमारे विरुद्ध, अपमान किया, झूठी बातें फैलाई हमारे विषय में, कलंक लगाए, उनका क्या करेंगे? क्षमा क्यों? हमेशा हम ही करें सब? गलती तो उनकी है, उन्होंने किया ऐसा, हमने थोड़ी किया पिछले जन्म में। पिछले जन्म में हमने किया होगा। और वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमें बहुत सताया है या अभी भी सता रही है, सताया था नहीं, सता रही है प्रेजेंट में, अभी सता रही है, मानसिक यातनाएं, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, मैसेजेस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, अभी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो क्या करेंगे ऐसी आत्माओं का? माफ कर देंगे? अब ये बताओ क्यों माफ करना है? संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए हमें माफ करना है। एक, दस कारण बताओ। एक हो गया क्योंकि संपूर्ण हमें बनना है। दूसरा, एक भाइयों की तरफ से, एक बहनों की तरफ से। रुको, अभी भाइयों का हो गया, अभी बहनों की तरफ से। हमें आत्माओं को क्यों माफ करना है? निर्बोध निर्संकल्प अवस्था को हमें प्राप्त करना है इसलिए। इधर तीसरा, हम पूर्वज आत्माएं हैं इस संसार के, फोर फादर्स एंसेस्टर्स, पूर्वज हम है। इसके लिए पूर्वजों के कर्तव्य महान होते हैं। पूर्वज जो होते हैं बड़े होते हैं। संसार की आत्माएं अभी अभी आई है द्वापर से, हम तो बहुत पहले से धरती पर है, सतयुग से हम बड़े हैं। एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता है और छोटा सा उसका नाती होता है, उसकी दाढ़ी खींचता है, कान खींचता है, तो नाराज होता है, उस पर बहुत शरारती करता है, उसको सताता है, उसके दादा को। तो दादा क्या करता है? तो हम पूर्वज है इसलिए हमें माफ करना है। और माताओं की तरफ से जिन जिन आत्माओं ने आपको बहुत सताया, उनका क्या करोगे? उनके साथ के कर्म बंधन हमें समाप्त करने हैं, इसके लिए हमें उन्हें माफ करना है। और पीछे क्यों माफ करेंगे? अच्छा, भाइयों की तरफ, भाइयों की तरफ से पीछे माफ क्यों करना है आत्माओं को? वो माफ करेंगे तो वापस वापस करते रहेंगे, तो वो भी परमात्मा की संतान है इसलिए माफ करना है। कितना अच्छा उत्तर है। साकार महावाक्य है बाबा के, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। इसके लिए ये मत समझना मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, सारे विश्व का मैं बाप हूं। वो भी परमात्मा संतान है, ईश्वरीय औलाद है इसलिए, परंतु केवल भूले हुए है, विस्मृति में है, भटके हुए है, अज्ञान में है। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी लेता है और शराब पीकर जोर जोर से चिल्लाता है, हंगामा करता है, तो लोग क्या करते हैं पता है? अंडर इन्फ्लुएंस है, प्रभाव में है, जब उतर जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वैसे ही संसार की आत्माएं भी विकारों के वशीभूत है। और पीछे क्यों माफ करना है? हम देवता बनने वाले हैं इसलिए हमें माफ करना है। हम किसी के प्रति घृणा और किसी के प्रति नफरत अपने हृदय में नहीं रख सकते, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें देवता बनना है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि इस संसार के एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारे मन में घृणा है, तुम संपूर्ण नहीं बन पाओगे। एक सिंगल आत्मा के प्रति भी। और हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, और हम दाता के बच्चे, इसलिए हमें क्षमा करनी चाहिए। हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है इसलिए हमें क्षमा करनी चाहिए। और छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा है तो अच्छा, वो ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान में है और छोटा बच्चा है। और माफ, हम सुखदेव है, सबको सुख देने वाले हैं इसलिए हमें माफ करना है। और हम मास्टर सर्वशक्तिमान है तो माफी केवल शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है, कमजोर आत्माएं माफ नहीं कर सकती है। अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, अर्थात हम कमजोर है। माफी तो राजा महाराजा करते थे, बड़ा अपराधी आ गया, माफ। और अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। और माफ क्यों करना है? माफ कर देंगे तो उनकी दुआएं मिलेगी। दुआएं नहीं, वो तो गाली देने को तैयार है। अच्छा, माफ हम कर देंगे तो शायद दे भी सकते हैं। अच्छा, और परमपिता के अंश विशेष, और हम विघ्न विनाशक हैं, और बदला लेने का भाव है। हम अगर माफ नहीं कर रहे, अर्थात अभी भी मन की तैयारी है, अवसर आ जाए तो बदला लेंगे। उसके पास हम गए थे, उससे हमने वो चीज मांगी थी, उसने नहीं दी, अब उसको आने दो। कभी ना कभी तो आएगा हमारे पास, हम भी देखेंगे। जब उसको आवश्यकता थी तब उसने दिया नहीं। जब हम बीमार पड़े तो वो देखने तक नहीं आए, अब पढ़ने दो बीमार, हम भी नहीं जाएंगे। बदला, सूक्ष्म बदला। संसार के लोग स्थूल बदला लेते हैं, ब्राह्मण आत्माएं सूक्ष्म बदला लेती है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और क्यों माफ करना है? अभी भी एक उत्तर नहीं आया है। हम मास्टर क्षमा के सागर हैं और हमारा अहिंसा परम धर्म है, इसलिए हमें माफ करना है। और मतलब वो कुछ भी करते रहे और हम माफ करते रहे, वो रोज आकर हमारा अपमान करे, रोज आकर हमारी ग्लानी करे, हमारे बारे में गलत बातें फैलाए, दोष झूठे आरोप लगाए, कहेगा कि तुमने ये चोरी की है, तुमने ये किया है, जब हमने किया ही नहीं है, हम थे ही नहीं वहां पर, फिर भी झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो किसी जन्म में अच्छा पर याद रहता है उस समय। लंदन में एक साधु था जिसको मर्डर में केस में पकड़ लिया गया, उसको 22 साल की सजा दे दी। अब उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा खाली थोड़े से शब्दों में कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पर किसी ने माना नहीं, उसको सजा दे दी। हाँ, आएंगे आएंगे, मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं। उसको जेल में डाल दिया, 18 साल के बाद जिसने खून किया था, मर्डर किया था, वो पकड़ा गया। गवर्नमेंट ने साधु को रिहा कर दिया, तो वो कहने लगा मुझे अब यही रहने दो, मेरी अच्छी साधना हो रही है जेल में। और रही तो मर्डर की बात, वो तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी है इस जन्म में, फिर भी मुझे सजा हुई। इसका अर्थ ये किसी और जन्म का पाप था, इस जन्म में तो पाप होने का तो सवाल ही नहीं है, फिर भी पाप न होते हुए भी सजा हुई और मैं 18 साल तक जेल में रहा। और बाद में जिसने खून किया था वो बाहर आकर कहता है कि मैंने किया था, और तब छोड़ रही है, परंतु फिर भी भोगा तो ना इसने। और क्यों? क्योंकि हिसाब किताब था, किसी और जन्म का पाप था। क्या कहा आपने? और क्यों माफ करना है? हम पूज्य आत्मा है, पूर्वज बोल दिया, अब ये दूसरा बताया, हम पूज्य है इसलिए माफ कर दो। और कुछ बताया किसी ने? ड्रामा का हर सीन बहुत ही कल्याणकारी है, तो पर माफ क्यों कर दे फिर? और हम माफ कर दे तो उनको, हम माफ कर देंगे तो हमको संतुष्टता मिलेगी, और वो बदल भी सकते हैं यदि हम माफ करो तो। कितनी अच्छी पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है बहुत। हो सकता है शायद कदाचित संभवतः बदल भी जाए, स्वभाव ही परिवर्तन हो जाए, और खुद का नुकसान होगा यदि हम किसी को माफ ना करेंगे तो। और हाँ, वो तो हो गया, हिसाब किताब बोल दिया, हमारा योग अच्छा लगेगा जैसे ही हम माफी कर देंगे, हमको हल्का लगेगा, योग थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, बोझ जो है ना यहाँ रखा हुआ वो उठ जाएगा। और हमेशा महासागर बनना है, और देवकुल की महान आत्माएं हैं इसलिए, और परमात्मा से क्या मिलेगा? क्या परमात्मा से शांति मिलेगी? ओके। और भगवान ने भी हमको माफ किया है, भगवान ने भी तो माफ किया, कितने तो पाप ही पाप थे जब आए। और आए बरबर बाबा ने क्या कहा? हे महान आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माओं, कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए। अगर वो चाहे तो ऐसा भी कह सकता था, हे पतित आत्माओं आ गए, भागो यहां से, बिल्कुल नहीं आना मेरे सामने, तुमने मेरी इतनी ग्लानी की, मेरा इतना अपमान किया, बिल्कुल मेरे सामने नहीं आना, ऐसा भी कह सकता था। परंतु वो क्या कहता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो जहान के नूर हो, प्रकृति के लिए खुराक हो, तुम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम देव कुल की आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, हैप्पीएस्ट हो, स्वीटेस्ट हो, लवलीएस्ट हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तुम हो। और क्यों माफ करना है? बाबा का बच्चा बनना तो माफ करना है। और हम निमित्त आत्मा है तो निमित्त का माफी से क्या संबंध? एक और कारण है, तुम्हें आत्माओं को माफ करना है, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। क्यों माफ करना है? चाहे उससे फायदा हो ना हो, ना पता क्या हो, ये मैं कह रहा हूं तुमको। भगवान उवाच, स्वयं भगवान कह रहा है कि ये मेरी आज्ञा है, इसलिए तुम्हें माफ करना है। और कैसी माफी? अनकंडीशनल पार्डन, बेशर्त। ऐसा नहीं मैं तुम्हें माफ करूंगा पर ये करना अगली बार से, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली माफी नहीं। हम महान आत्मा है, उच्च पूज्य आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, हम बाप समान है, दयालु कृपालु हमारा गायन है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, अल रहमान अल रहीम कहा है कुरान ने भगवान को, गॉड को ओशन ऑफ मर्सी कहा है क्रिश्चियनिटी ने। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के दया करता है, ऐसा भगवान का स्वभाव है, इसलिए माफ करना है। तो ये दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप सूक्ष्म वतन में और एक इमर्ज करना है, वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमारी मदद की, वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, वो सभी आत्माएं जो यहां बैठकर रोज मुरली सुनाती है, वो सभी आत्माएं जिन्होंने जो हमें मधुबन ले गई, वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमें मधुबन की सैर कराई और भगवान से मिलाया, वो सभी आत्माएं जब हम भूखे थे और प्यासे थे और हमें पानी दिया और हमें भोजन दिया, वो हमारे लौकिक माँ बाप जिन्होंने हमें ये देह दी और हम इस संसार में आए, इनका क्या करना है? क्या करेंगे इनको? धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलो अब इस योग का अभ्यास करेंगे। जो तीन बातें हमने सुनी, एक आत्माओं को से क्षमा मांगना, दूसरा आत्माओं को क्षमा करना, और तीसरा आत्माओं को धन्यवाद करना, इसका हम योग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। रिश्ता अक्ष से पार, सूर्य चांद सितारों से पार, और पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि, सामने उन सभी आत्माओं को देख रहा हूं जिनको मैंने बहुत सताया था, दुख दिया था, पीड़ा पहुंचाई थी, अपशब्द बोले थे, कटु व्यवहार किया था, हे आत्मा मैं क्षमा प्रार्थी, हे आत्मा मुझे क्षमा कर दो। देख रहा हूं ये सभी आत्माएं कितनी क्रोधित हैं, परंतु अब मेरे क्षमा मांगने पर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ रही। हे आत्माओं, मैं अज्ञान में था, विस्मृति में था, मेरे कटु शब्द और व्यवहार को क्षमा कर दो। देख रहा हूं वो सभी आत्माएं मेरे सिर पर हाथ रख रही है, मुझे दुआएं दे रही है, और मेरे सिर का ये बोझ जब उठ गया है समाप्त हो गया है। मैं दूसरी ओर देख रहा हूं एक दूसरा संगठन आत्माओं का, असंख्य आत्माएं, ये वो आत्माएं हैं जिन्हों से मुझे दुख मिला है। मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने मुझे बहुत सताया है बचपन से अब तक। मैं देख रहा हूं इन आत्माओं को जिन्होंने मेरी ग्लानी की, अपमान किया, षड्यंत्र किए, नीचा दिखाया, हंसी उड़ाई। आज मैं पूर्वज आत्मा इन सभी आत्माओं को बेशर्त क्षमा करता हूं, रहम के सागर की संतान मैं एक महान आत्मा। देख रहा हूं कि अब इन आत्माओं में भी परिवर्तन आ गया है, उनके मन में भी शुभ भाव और शुभ कामनाएं भर गई। अब मुझ आत्मा के सम्मुख एक तीसरा संगठन उभर कर आ रहा है। देख रहा हूं अपने लौकिक मां बाप को, चाहे ये ज्ञान में हो या ना हो, इन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूं, हार्दिक धन्यवाद। देख रहा हूं वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे मदद की थी, हर संकट के समय इन्होंने मेरी सहायता की। संसार की ये सभी आत्माओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। देख रहा हूं इन बहनों को जिन्होंने मेरा कोर्स कराया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे मधुबन ले गए, भगवान से मिलाए और अब भी रोज मेरी पालना कर रही है। इन सभी आत्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरिश्ता आज अत्यंत हल्का महसूस कर रहा हूं, निर्बोझ अवस्था, निर्भार स्थिति, डबल लाइट। मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस आता हूं, पुनः इस तन में प्रवेश करता हूं। ओम तो ये अभ्यास रोज करना है। करेंगे सभी? कितना दिन करेंगे? कितना दिन? कोई उसका ये कोई पैकेज कितना दिन का है? 10 दिन, 15 दिन, 3 मंथ्स? हाँ ये ठीक है। तो आज से 3 मंथ्स के लिए रोज सुबह अमृत वेला ये अभ्यास करना है। आत्माओं को इमर्ज करना, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद देना, और उसमें उनसे बातें करना, ऐसे बातें करना जैसे वो सम्मुख है हमारे, ठीक है। उनसे कभी कभी आह्वान करना उनको, ये सब सूक्ष्म वतन में जो ड्रिल बताई है, 7, 6वां नंबर जो है वहां करना है। सेंटर पर प्रोग्राम है शाम को, सुबह अमृत वेले। वो सारी आत्माएं जो सेंटर में आने वाली है बाहर की, उन सबको पहले ही इमर्ज करना और उन्हें सकाश देना, उनसे बात करना कि तुम सभी देवकुल की महान आत्माएं हो। इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, कोई बाहर की आत्माएं आ रही है, पहले ही क्या करना है, उनसे बात करनी और उनको पहले ही सकाश देना है कि जागो, तुम देवकुल की आत्माएं हो। आज कहा ना सुबह साकार मुरली में, जागो और जगाओ संत महात्माओं को। ऐसी ही कथा पढ़ते रहते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं। तो आत्माओं को जगाना है, बात करनी है और उनका आह्वान करना है। अभी हम तो कितना महीना करेंगे सभी? 3 महीना रेगुलर करना है, थियरी नहीं है, करना है। और 3 महीने अगर कोई रेगुलर कर दे तो अचानक अनुभव होगा कि जो कोई हमें भारी कर रहा था, कोई एक बात, अचानक वो बोझ हल्का हो गया, अचानक पुरुषार्थ तीव्र हो गया, अचानक कोई आत्मा के संकल्प चल रहे थे हमारे बारे में वो नष्ट हो गए, माफी हो गई। और हम एक बार माफी करने से नहीं होगा किसी को कि हम माफ कर दे, एक आज कर दिया और हो गया। रोज माफ करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने जो दर्द और चोट पहुंचाई है बहुत गहरे में है। हमने एक बार कह दिया मैं तुम्हें माफ करता हूं, हो गया। उसने 10 साल तक पहुंचाई है, 10 साल तक रोज बहुत सताया है, तो 10 दिन तो मिनिमम करना पड़ेगा रोज। तो हम अभी 3 महीने ये अभ्यास करेंगे रोज सुबह। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट केवल। 5 मिनट के बाद वापस यहां आकर बैठना है।